मेडिकल डायग्नोसिस की मेरा मतलब है कि जब भी हम किसी चिकित्सा जांच की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा एक सटीक जवाब की उम्मीद करते हैं।
हाँ बिल्कुल, एक ब्लैक एंड व्हाइट जवाब।
सही कहा, बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। मतलब अगर आपके हाथ में दर्द है और आप एक्सरे करवाते हैं, तो उस काली फिल्म पर टूटी हुई हड्डी की सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है।
हाँ, डॉक्टर सीधा उंगली रखकर बता देते हैं कि भाई समस्या ठीक यहाँ पर है।
बिल्कुल, ये एक ऐसा बाइनरी सिस्टम है जो या तो हाँ में जवाब देता है या ना में।
हड्डी या तो टूटी है या फिर नहीं टूटी है, इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है। और सच कहूं तो इंसानी दिमाग इसी तरह की स्पष्टता खोजना पसंद करता है।
हाँ, क्योंकि इससे तसल्ली मिलती है।
एकदम, हमें हर चीज के लिए एक साफ सुथरा डिब्बा चाहिए होता है जिसमें हम अपनी जानकारी को फिट कर सके।
लेकिन और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। समस्या तब आती है जब हम इंसानी अस्तित्व के संकट, किसी बड़े आघात या किसी बड़े ट्रॉमा की दुनिया में कदम रखते हैं,
जहां कोई एक्सरे मशीन काम नहीं करती।
बिल्कुल नहीं करती। जब एक पूरा समाज अपनी पहचान खो देता है, तो अचानक वो एक्सरे वाला लॉजिक फेल हो जाता है। हम एक ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही धुंधला और जटिल है। वहां कोई एक सफेद लाइन नहीं होती जो बता सके कि दर्द आखिर आ कहां से रहा है।
सही बात है, और इस धुंधलेपन को समझना ही सबसे बड़ी चुनौती है।
मतलब जब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, तो इंसान अपनी दिशा पूरी तरह से खोने लगता है।
और आज के इस गहन विश्लेषण का आधार एक ऐसा ही ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक धुंधलापन है। आज की चर्चा में हम डॉक्टर जॉन ओसवाल्ड द्वारा दी गई शिक्षाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, जो यशाया यानी आइजेया की पुस्तक के अध्याय 40 और 41 पर आधारित है।
ये बहुत ही शानदार स्रोत सामग्री
है ना? इस विश्लेषण में इतिहास, भाषा विज्ञान और इंसान के मनोविज्ञान का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ घोर निराशा और इंसान की शक्ति के झूठे भ्रम को तोड़ता है। बिल्कुल, और इस विषय की गहराई तक जाने के लिए हमें इतिहास में एक बहुत बड़ा मानसिक जंप लेना होगा।
अच्छा, वो कैसे?
देखिए, यशाया के इन अध्यायों को समझने की शुरुआत इस बात से होती है कि हमें उस समय से करीब 150 साल भविष्य में जाना होगा।
सीधे 150 साल आगे?
हाँ, हमें उस समाज की मानसिकता को समझना होगा जो अपना सब कुछ खो चुका था। एक ऐसा समाज जिसे लगता था कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है और वे इतिहास के पन्नों से मिटा दिए गए हैं।
तो मतलब इस ऐतिहासिक बदलाव की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही नाटकीय है। स्रोत सामग्री के अनुसार यशाया की पुस्तक के पहले 39 अध्यायों तक सब कुछ एक खास ढर्रे पर चल रहा होता है।
हाँ, उस समय इसराइल के लोगों पर असीरिया साम्राज्य का बहुत बड़ा डर छाया हुआ था।
असीरिया, जो उस समय का सबसे क्रूर और ताकतवर साम्राज्य था।
लेकिन जैसे ही 40वां अध्याय शुरू होता है, समय, स्थिति और पूरा माहौल बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम बदल जाता है।
और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है पूर्व में, वो भी बेबीलोन के निर्वासन में। असीरिया के तो नामो निशान नहीं है, और अब बेबीलोन ने सब कुछ तबाह कर दिया है।
इस अचानक हुए बदलाव ने ना अकादमिक दुनिया में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था।
विवाद? किस तरह का विवाद?
कई विद्वान ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि 40वें अध्याय से समय काल कैसे इतनी तेजी से बदल गया। उनका तर्क ये है कि चूंकि समय बदल गया है और लिखने का लहजा अलग महसूस होता है, इसलिए इसके लेखक भी अलग अलग ही होंगे।
अच्छा, तो वे एक लेखक नहीं मानते?
नहीं, कुछ अकादमिक हलकों में ये माना जाता है कि इसे फर्स्ट यशाया, सेकंड यशाया और थर्ड यशाया ने लिखा है, या फिर शायद सदियों तक किसी समिति ने यानी किसी कमेटी ने मिलकर इसे संकलित किया।
समिति वाली बात तो सच में थोड़ी अजीब लगती है।
है ना?
मतलब अगर हम आधुनिक दुनिया का उदाहरण लें, चाहे वो स्कूल का कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो या ऑफिस की कोई रिपोर्ट, जब भी कई लोग मिलकर कुछ लिखते हैं तो उसका टोन या लहजा हमेशा बेतरतीब हो जाता है,
एकदम खिचड़ी बन जाती है।
बिल्कुल। तो ये विचार कि दुनिया की इतनी महान काव्यात्मक और सुसंगत साहित्यिक रचनाओं में से एक को किसी समिति ने सदियों तक बैठकर लिखा, ये थोड़ा अव्यवहारिक लगता है।
और डॉक्टर ओसवाल्ट ने इस पर एक बहुत ही सटीक और थोड़ी व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी की है।
क्या कहा है उन्होंने?
उनका कहना है कि ऊंक असल में एक घोड़ा है जिसे एक समिति ने डिजाइन किया है।
अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार है।
है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी कोई समिति किसी महान विचार पर काम करती है, तो वो उसे जटिल और बेढंगा बना देती है। इतनी महान साहित्यिक और आध्यात्मिक रचना कोई समिति तो नहीं लिख सकती।
ये तर्क बहुत ठोस लगता है।
हाँ, और डॉक्टर ओसवाल्ड इस बात का पुख्ता प्रमाण देते हैं कि ये एक ही लेखक यानी यशाया द्वारा लिखा गया है, जिन्हें भविष्य का एक बहुत ही स्पष्ट ज्ञान या दृष्टिकोण मिला था।
लेकिन एक सवाल है, अगर यशाया ही इसके अकेले लेखक हैं और वह 150 साल भविष्य के बारे में लिख रहे हैं, तो इस बात का प्रमाण क्या है? मतलब वे कैसे साबित करते हैं कि यह सच में किसी भविष्य के लेखक ने नहीं लिखा?
इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अध्याय 40 के बाद ऐतिहासिक विवरणों का अचानक से गायब हो जाना।
विवरण गायब हो जाते हैं?
हाँ, देखिए, पहले 39 अध्यायों में हम देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह का जिक्र है, उनके द्वारा यरूशलेम में बनाए गए पुल और पानी की सुरंगों का बहुत ही बारीकी से वर्णन है।
काफी डिटेल में।
बिल्कुल, लेकिन जैसे ही हम 40वें अध्याय में बेबीलोन के समय में आते हैं, वैसी ऐतिहासिक बारीकियां एकदम नदारद हो जाती हैं।
अच्छा, तो ऐसा क्यों?
डॉक्टर ओसवाल्ड समझाते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यशाया भविष्य की सटीक ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं जानते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि बेबीलोन की कौन सी सड़क पर लोग कैद होंगे या वहाँ के राजा का महल असल में कैसा दिखता है।
तो उन्हें सिर्फ मुख्य बात पता थी?
हाँ, उन्हें केवल वो मुख्य ईश्वरीय संदेश पता था जो उन भविष्य के निराश लोगों के लिए था।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक स्थिति है। जरा सोचिए, उन लोगों के लिए लिखने का असर क्या होता होगा जो 150 साल आगे बेबीलोन में बंदी हैं।
बहुत ही भयानक अनुभव रहा होगा।
बिल्कुल, उनकी पहचान छिन चुकी है, उनका पवित्र मंदिर टूट चुका है और उन्हें अपने घर से हजारों मील दूर एकदम अनजान संस्कृति में फेंक दिया गया है।
वे तो यही सोच रहे होंगे कि उनका ईश्वर बेबीलोन के ताकतवर देवताओं से हार गया है।
सही कहा। और जब कोई कौम इस हद तक टूट चुकी हो, जब उनके अंदर का आत्मविश्वास पूरी तरह मर चुका हो, तो ईश्वर उनसे पहला शब्द क्या कहता है?
अध्याय 40 की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले शब्द से होती है और वो शब्द है सांत्वना, यानी कंफर्ट।
सांत्वना?
हाँ, अंग्रेजी अनुवाद में इसे कंफर्ट माय पीपल कहा गया है।
यहीं पर भाषा का एक बहुत बड़ा और भ्रामक खेल सामने आता है, क्योंकि आधुनिक दुनिया में जब हम कंफर्ट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही कोमल सी छवि बनती है।
जैसे कि?
जैसे किसी रोते हुए इंसान को गले लगाना, उसे गर्म कॉफी पिलाना, या वो वार्म फजीज वाली सहानुभूति की भावना। तो क्या 150 साल से बंदी लोगों को सिर्फ एक गले लगाने की जरूरत थी?
ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो समय के साथ भाषा के बदलने से पैदा हुई है। डॉक्टर ओसवाल्ड याद दिलाते हैं कि जब 1611 में किंग जेम्स संस्करण का अनुवाद हुआ था, तब अंग्रेजी में कंफर्ट का अर्थ सहानुभूति या कोमलता बिल्कुल नहीं था।
अच्छा, तो उस समय इसका क्या मतलब था?
उस समय कम्फर्ट लैटिन शब्द फोर्टिस से जुड़ा था, जिसका मतलब होता है ताकत। 17वीं सदी में इसका मतलब था प्रोत्साहित करना या रीढ़ की हड्डी में मजबूती भरना।
रीढ़ की हड्डी में मजबूती भरना? लेकिन एक मिनट, क्या सांत्वना का मतलब थोड़ा कोमल नहीं होना चाहिए? मेरा मतलब है, जब कोई इंसान गहरे दुख में होता है, अपना सब कुछ हार चुका होता है, तो उसे शायद ताकत से ज्यादा एक सहारे और हमदर्दी की जरूरत होती है, किसी ऐसे व्यक्ति की जो बस बैठकर उसका दुख सुन ले।
ये सोचना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखिए। जब किसी व्यक्ति या पूरे समाज की पहचान ही खतरे में हो, जब वे खुद को पूरी तरह असहाय और खत्म मान चुके हों, तो सिर्फ कंधे पर हाथ रखना या हमदर्दी जताना काफी नहीं होता।
क्योंकि हमदर्दी से हालात तो नहीं बदलते।
बिल्कुल, हमदर्दी उन्हें वहीं उसी दयनीय स्थिति में छोड़ देती है। उस समय उन्हें फिर से खड़े होने, दुनिया का सामना करने और लड़ने के जज्बे की जरूरत होती है।
ये बात तो है।
इसीलिए ईसाई धर्म शास्त्र में पवित्र आत्मा को द कम्फर्टर कहा गया है। वो आपको सुलाने या पुचकारने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपको तब दोबारा खड़ा होने की ताकत देता है जब दुनिया आपको जमीन पर गिरा चुकी हो।
ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है।
डॉक्टर ओसवाल्ड इसे रूथ और बोएज के उदाहरण से बहुत सुंदरता से समझाते हैं।
हाँ, मैंने भी पढ़ा था। रूथ की कहानी में ऐसा क्या है जो इस कंफर्ट वाले पहलू को समझाता है?
देखिए, जब रूथ एक विदेशी जमीन पर विधवा और बेसहारा थी, उसकी जिंदगी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर थी। ग्रंथ कहता है कि बोआज ने रूथ के दिल से बात की।
तो उसने सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाई?
नहीं, बोआज ने उसे सिर्फ बेचारी समझकर तरस नहीं खाया, बल्कि उसने उसे सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की एक नई उम्मीद दी। उसने रूथ के अंदर वो ताकत भरी जिससे वो अपने हालातों का डटकर सामना कर सके, ये होता है असली कम्फर्ट।
ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है, लेकिन अगर ये नया प्रोत्साहन लोगों की रीढ़ में मजबूती भरने और उन्हें फिर से खड़ा करने के लिए है, तो ये जमीन पर मतलब हकीकत में कैसा दिखता है?
आप बेबीलोन के संदर्भ में पूछ रहे हैं?
हाँ, क्योंकि लोग तो अभी भी रेगिस्तान के बीच उस बेबीलोन में फंसे हुए हैं ना।
बिल्कुल, और यशाया 40 इसी का जवाब देता है। वहाँ बात की गई है कि रेगिस्तान में ईश्वर के लिए एक राजमार्ग यानी एक हाईवे बनाया जाए।
रेगिस्तान में हाईवे?
हाँ, घाटियों को भर दिया जाए और पहाड़ों को काट दिया जाए ताकि रास्ता एकदम सीधा हो सके। और आपको पता है, बाद में नए नियम में इसी सटीक छवि को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश से भी जोड़ा गया, जो लोगों के दिलों का रास्ता तैयार कर रहे थे।
घाटियों को भरने और पहाड़ों को काटने की ये छवि बहुत ही विशाल है। सच कहूँ तो ये इंसानी क्षमता से बिल्कुल बाहर की बात लगती है।
और इसीलिए डॉक्टर ऑसवाल्ड इस प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही रोचक एक आधुनिक उदाहरण देते हैं, आरजी लिटोर्नियो का।
लिटोर्नियो, वे कौन थे?
लिटोर्नियो एक बहुत बड़े आविष्कारक थे जिन्होंने भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनें यानी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाई थी।
अच्छा, वो बड़ी बड़ी बुलडोजर टाइप मशीनें?
बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद उनकी मशीनों ने सचमुच पहाड़ों को काट दिया और खाइयों को भर दिया ताकि नए रास्ते बन सके।
अरे वाह।
डॉक्टर ऑसवाल्ड कहते हैं कि ईश्वर का काम लिटोर्नियो की उस भारी मशीन की तरह है। जब इंसान के रास्ते में निराशा के पहाड़ और हार की खाइयां होती हैं, तो ईश्वर एक ब्रह्मांडीय बुलडोजर की तरह उन बाधाओं को समतल कर देता है ताकि वो अपने असहाय लोगों तक पहुंच सके।
चर्चा का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला लगा, क्योंकि ईश्वर ये नहीं कह रहा कि देखो मैंने रास्ता बना दिया है, अब तुम किसी तरह पहाड़ों पर चढ़कर मुझ तक पहुंचो।
बिल्कुल नहीं,
बल्कि वो खुद पहाड़ों को काटकर उन तक पहुंचने का रास्ता बना रहा है। लेकिन एक सवाल और उठता है, जब ईश्वर अपने लोगों तक पहुंचता है तो वो उनके सबसे बड़े डर का क्या करता है? मेरा मतलब है बेबीलोन का वो विशाल काय, अजय राक्षस जैसा साम्राज्य।
और यही वो जगह है जहाँ ये ग्रंथ बेबीलोन के गुरूर को एक ही झटके में तोड़ देता है।
कैसे?
वो साम्राज्य जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक थी, उसके बारे में ग्रंथ में कहा गया है, सभी इंसान घास हैं।
घास?
हाँ, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन ईश्वर का शब्द हमेशा रहता है।
ये तो एक मतलब एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है, इसे हम एक पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं।
एकदम सही।
जो साम्राज्य दुनिया पर राज कर रहा है, जिसकी सेनाओं ने यरूशलेम को जला दिया, उसे महज सूखती हुई घास कह देना अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और आध्यात्मिक बगावत है।
बिल्कुल,
ये उन डरे हुए लोगों को उनके दुश्मनों का वास्तविक और नश्वर आकार देखने में मदद करता है।
यह सच में एक बगावत थी, लेकिन देखिए, बेबीलोन को घास कहना आसान हो सकता है, पर उस समय के लोगों के दिमाग में एक और बहुत बड़ा सवाल चल रहा था।
वो क्या?
क्या इसराइल का ईश्वर सच में बेबीलोन के उन शक्तिशाली देवताओं से बड़ा है जो उस समय दुनिया को जीतते हुए दिख रहे थे?
बहुदेववाद का मुद्दा।
हाँ, उस दौर में बहुदेववाद का ही बोलबाला था। यशाया यहाँ सीधे तौर पर उस बहुदेववादी मानसिकता से टकराते हैं।
प्राचीन दुनिया की बहुदेववादी मान्यताएं बहुत ही दिलचस्प थी। मैंने पढ़ा है कि वे मानते थे कि देवता भी राजाओं के दरबार की तरह काम करते थे।
हाँ बिल्कुल,
मतलब वे कोई भी बड़ा फैसला लेने, युद्ध करने या सृष्टि रचने से पहले एक दूसरे से सलाह लेते थे। उनकी अपनी एक संसद जैसी होती थी।
लेकिन यशाया एक बहुत ही तीखा सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए किससे सलाह ली, किसने उसे बताया कि चीजों को कैसे मापना है?
और उसका जवाब है, किसी से नहीं।
बिल्कुल, किसी से नहीं, वो अकेला और सर्वोच्च है। राष्ट्रों की शक्ति की तुलना करते हुए ग्रंथ कहता है कि दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र बाल्टी में एक बूंद यानी ड्रॉप इन अ बकेट के समान है।
अरे हाँ, ये ड्रॉप इन अ बकेट वाला मुहावरा डॉक्टर ऑसवाल्ड यहाँ सीएस लुईस की किताब का एक बहुत ही शानदार जिक्र करते हैं।
हाँ, लुईस ने बताया है कि कैसे ये मुहावरे अंग्रेजी भाषा का हिस्सा बने।
बिल्कुल, लुईस बताते हैं कि कैसे ड्रॉप इन अ बकेट और स्किन ऑफ योर टीथ जैसे मुहावरे सीधे किंग जेम्स बाइबल के अनुवाद से ही आए और अंग्रेजी भाषा का अभिन्न हिस्सा बन गए।
ये बहुत रोचक तथ्य है।
लेकिन अगर ईश्वर इतना विशाल है कि पूरी दुनिया के राष्ट्र मिलकर भी बाल्टी की एक बूंद के समान है, तो उसे मूर्तियों से कैसे तोला जा सकता है?
स्रोत सामग्री में मूर्तियों के बनने के प्रक्रिया का जो व्यंग है ना, वो कमाल का है।
हाँ, वो लकड़ी काटने वाला उदाहरण। बिल्कुल, एक इंसान जंगल जाता है, लकड़ी काटता है, उस लकड़ी के आधे हिस्से से वो आग जलाता है, अपना खाना पकाता है और खुद को गर्म करता है। और जो लकड़ी का टुकड़ा बच जाता है उसे वो सोने चांदी से मढ़कर अपना भगवान बना लेता है। फिर वो उस बचे हुए लकड़ी के टुकड़े के सामने झुककर कहता है कि मुझे बचा लो।
ये कितना हास्यास्पद लगता है सुनने में,
है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपने लेगो ब्लॉक से एक छोटा सा घर बनाए और फिर कोई उस लेगो के घर की तुलना ब्रह्मांड के मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट से करने लगे।
ये बहुत ही सटीक तुलना है। एक ऐसी चीज जो इंसान के हाथों की मोहताज है उसे सृष्टि के रचयिता के बराबर खड़ा करना उन मिट्टी के खिलौनों जैसी बात है जो पहली बारिश में गल जाते हैं।
लेगो वाली ये तुलना उस समय की बेवकूफी को बहुत अच्छे से दर्शाती है। और यशा की दृष्टि कितनी वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय थी इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि अध्याय 40 में पृथ्वी के चक्र या गोलाई का उल्लेख किया गया है, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी।
बिल्कुल, आज से हजारों साल पहले लोग किसी बहुत ऊंचे पहाड़ या सियर्स टॉवर पर तो नहीं गए थे जहां से उन्हें पृथ्वी की गोलाई का अंदाजा हो सके।
उनके पास कोई सैटेलाइट इमेज थोड़ी ना थी।
वही तो, फिर भी ग्रंथ में ये ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण मौजूद था कि पृथ्वी गोल है और ईश्वर उसके ऊपर विराजमान है।
सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सितारों के बारे में भी उनका दृष्टिकोण उस समय की दुनिया से बिल्कुल अलग था।
हाँ, क्योंकि उस जमाने में तो तारों को ही देवता माना जाता था।
बिल्कुल, डॉक्टर ऑस्वर्ड हमें 5000 साल पुरानी प्राचीन सुमेरियन संस्कृति के बारे में बताते हैं। वहाँ ईश्वर के लिए जो चित्र लिपि थी वो असल में एक तारे का ही चित्र था।
अच्छा।
हाँ, प्राचीन लोग भोर के तारे को वीनस या इनाना कहते थे और उसकी पूजा करते थे। लेकिन यशाया एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं।
वो क्या?
वे कहते हैं कि सच्चा ईश्वर वो है जो इन सभी तारों को उनके नाम से बुलाता है। वो उनका सृष्टि करता है, उनमें से एक नहीं। वो आकाश के तारों को ऐसे गिनता है जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को गिनता है।
ये बहुत ही खूबसूरत छवि है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल ये उठता है कि अगर ईश्वर इतना ही विशाल है, अगर ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में है, राष्ट्र केवल एक बूंद के समान है और तारे उसके इशारे पर चलते हैं, तो उसने बेबीलोन को कल ही नष्ट क्यों नहीं कर दिया?
ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है।
बिल्कुल, उन लोगों को 150 सालों तक इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? और यहीं पर बात आती है प्रतीक्षा यानी वेटिंग और मानवीय अधीरता की।
इंसान हमेशा तुरंत परिणाम चाहता है।
आज परेशानी आई तो आज ही उसका समाधान चाहिए।
हाँ, हम सबको इंस्टेंट फिक्स चाहिए होता है।
लेकिन यहाँ प्रतीक्षा का अर्थ सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठना और समय काटना नहीं है। इस संदर्भ में प्रतीक्षा का अर्थ है विश्वास के साथ उम्मीद करना, एक कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन।
ये शक्ति के पास है।
बिल्कुल सही। और जब इंसान गहरे दुख में प्रतीक्षा कर रहा होता है तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या ईश्वर सच में मेरी तकलीफ समझता है? इस असीम और सर्वशक्तिमान ईश्वर और इंसानी पीड़ा के बीच के रिश्ते को समझाने के लिए डॉक्टर ऑस्वाल्ड एक विशाल सुपर कंप्यूटर का बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं।
ये सुपर कंप्यूटर वाली बात कैसे काम करती है?
कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही उन्नत सुपर कंप्यूटर है जिसके पास दुनिया का सारा डेटा है। वो जानता है कि गरीबी क्या है, भूख क्या है, या दिल का टूटना क्या होता है।
ठीक है।
उसके पास इस सब की सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल जानकारी है, लेकिन वो मशीन कभी असल में भूख महसूस नहीं कर सकती।
हाँ, क्योंकि वो एक मशीन है।
डॉक्टर ऑस्वाल्ड बताते हैं कि ईसा मसीह के आने के बाद ईश्वर ने मानवीय पीड़ा को केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं जाना, बल्कि इसे अनुभवात्मक रूप से यानी एक्सपीरियंशियली भी महसूस किया। ईश्वर ने खुद इंसान बनकर दर्द, धोखे और मृत्यु का अनुभव किया।
ये बहुत गहरा विचार है जो उस कंफर्ट के वादे को और भी मजबूत करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि स्रोत सामग्री के अनुसार अध्याय 41 में इतिहास एक बार फिर करवट लेता है।
हाँ, कुसरू का उदय होता है।
बिल्कुल, पूर्व से एक नए राजा कुसरू या साइरस का उदय होता है। बेबीलोन का साम्राज्य हिलने लगता है और बाकी राष्ट्र एकदम घबरा जाते हैं।
और ऐसे उथल पुथल के समय में ईश्वर खुद को शुरुआत और अंत यानी अल्फा और ओमेगा बताता है। ग्रीक अनुवाद में इसे ईगोईमी या आई एम कहा गया है,
यानी जो कल था, जो आज है और जो हमेशा रहेगा।
सही कहा। अब जब दुनिया में नए साम्राज्य आ रहे थे तो बाकी राष्ट्रों की प्रतिक्रिया क्या थी? में घबराकर और भी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रहे थे,
पैनिक में आके।
हाँ, जब उनकी पुरानी मूर्ति या पुराना तारणहार फेल हो जाता तो वे कारीगरों को बुलाकर एक नया और बड़ा तारणहार गढ़ने लगते। उन्हें लगता था कि शायद ये नई मूर्ति उन्हें बचा लेगी।
लेकिन इसराइल के लिए, जो अभी भी बंदी थे, ये संदेश बिल्कुल अलग था।
एकदम अलग।
उन्हें कोई नई मूर्ति बनाने को नहीं कहा गया। उन्हें दो बहुत बड़े वादे दिए गए। पहला वादा था, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिसे इम्मानुएल कहा गया। और दूसरा वादा था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
और इस मैं मदद करूंगा वाले वाक्य का गहराई से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
हाँ, इसका क्या अर्थ है?
देखिए, मदद करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर कह रहा है तुम आराम से बैठ जाओ, कुछ मत करो, मैं सब अकेले कर दूंगा। और ना ही इसका मतलब ये है कि तुम अपना संघर्ष खुद करो, मैं बस दूर से बैठकर तुम्हें चीयर करूंगा। इसका असली अर्थ है एक साथ मिलकर काम करना,
एक साझेदारी।
बिल्कुल, ये एक साझेदारी है जहां ईश्वर कहता है तुम कदम बढ़ाओ और मैं तुम्हारी उस कोशिश में अपनी असीम ताकत के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ।
तो आज की इस पूरी चर्चा और इस स्रोत सामग्री के गहन विश्लेषण को अगर हम संक्षेप में देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये घोर निराशा को एक फौलादी ताकत में बदलने का ब्लूप्रिंट है, जिसे आधुनिक दुनिया सिर्फ एक कोमल कंफर्ट समझती है, वो असल में रीढ़ की हड्डी को सीधी करने वाला प्रोत्साहन है।
एकदम सही बात है।
ये हमें सिखाता है कि हमारे सामने खड़ी विशाल और अजेय दिखने वाली समस्याएं वास्तव में केवल सूखती हुई घास हैं। और सबसे बड़ी बात, ये विश्लेषण उस असीम ब्रह्मांडीय शक्ति को, जो तारों को नाम से बुलाती है, हमारी व्यक्तिगत मदद से जोड़ देता है।
और इस विश्लेषण की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी हजारों साल पहले थी। हम सभी के व्यक्तिगत जीवन में भी अपने अपने बैबिलोन होते हैं।
बहुत सी बाधाएं।
हाँ, ऐसी विशाल बाधाएं, बीमारियां या आर्थिक संकट जो हमें अजेय लगते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि चीजें कितनी भी स्थायी या भयानक क्यों न लगे, वे बदल सकती हैं। वे घास के समान हैं जिन्हें एक दिन सूखना ही है।
और इसी विचार से जुड़ी एक बहुत ही गहरी और सोचने लायक बात सामने आती है। जब प्राचीन बेबीलोन के लोग घबराते थे तो वो बचने के लिए लकड़ी और सोने की और भी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने लगते थे, ये सोचकर कि ये नया भगवान उन्हें बचा लेगा। आज के इस आधुनिक और सूचनाओं से भरे दौर में जब हमें अपने भविष्य से डर लगता है तो हम किस चीज की बड़ी मूर्तियां गढ़ रहे हैं?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
क्या हम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की चाहत और नई नई तकनीक को अपना नया रक्षक मान रहे हैं? हर नई समस्या के लिए एक नया ऐप, एक नया गैजेट, एक नया सिस्टम।
बिल्कुल।
बजाय इसके कि हम थोड़ी देर रुकें, विश्वास के साथ प्रतीक्षा करें और उस वास्तविक मदद को स्वीकार करें जो पहले से ही मौजूद है। यह एक ऐसा सवाल है जो उस प्राचीन रेगिस्तान से निकलकर सीधे आज की भागदौड़ भरी दुनिया से टकराता है। श्रोताओं को इस पर जरूर विचार करना चाहिए।